नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में 5,00,000 नए मतदाता जोड़े। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ मौसम की तैयारियों और अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका रवाना। अमेरिका की नाकाबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य फिर बंद किया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और इसके गठबंधन सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप किया है उसका दंड उन्हें अवश्य ही मिलेगा। विपक्ष ने संसद और राज्य विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया और उसे पास नहीं होने दिया। कल शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। जो दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वे देश की महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में बढ़ती भागीदारी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि देश की समस्त नारी शक्ति का आशीर्वाद उनकी सरकार के साथ है।
संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया उनसे मैं 2 टूक कहूंगा, ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्र हित को सर्वोपरि बताया और कहा कि सरकार के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके लिए वो सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण है। उन्होंने इस व्यवहार को महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान पर आघात बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है और ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सहित सभी क्षेत्रों में संतुलित सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का एक प्रयास था।
सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नया अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था।
श्री मोदी ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करके कांग्रेस ने खुद को सुधार विरोधी दल साबित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से हर सुधार पर निष्क्रिय रुख अपना रही है और उनकी कार्य संस्कृति में विलंब करना, ध्यान भटकाना और बाधा डालना शामिल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण के नए आंकड़े जारी किए हैं। मसौदा सूची प्रकाशित होने से लेकर नामांकन बंद होने तक लगभग 5,00,000 नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हुए हैं। जिला स्तरीय आंकड़ों से पता चला है कि सबसे अधिक वृद्धि उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और पूर्वी मिदनापुर जिलों में देखी गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बरजोरा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अलग अलग स्थानों पर प्रचार करेंगे। उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई स्थानों पर जनसभाएं करेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 23 अप्रैल को कुल 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। आज हम पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस चुनाव में 4 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर है। सीपीआई के उम्मीदवार शांति गोपाल गिरी है, जबकि कांग्रेस ने शेख जरियातुल हुसैन को मैदान में उतारा है। नामांकन की आखिरी तारीख तक नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,66,000 से ज्यादा है। नंदीग्राम सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होने की उम्मीद है। बीजेपी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुप्रबंधन के मुद्दों को लेकर हमला बोल रही है। वही तृणमूल कांग्रेस SIR के अंतर्गत मतदाताओं का सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रही है। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
उधर तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इरोड जिले के शिवगिरी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तरी जिलों में प्रचार किया। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के लिए कोयम्बटूर, तिरुपुर और नीलगिरी में चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सरकार अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकसित भारत रोजगार और जीविका मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कोलंबो पहुंच रहे हैं। ये यात्रा किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की द्वीप राष्ट्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह कोलंबो पहुंचने वाले हैं, जहां से वे श्रीलंका की अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। वे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया सहित अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं तथा श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के तमिल नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। कोलंबो में उपराष्ट्रपति भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे और भारत की आवासीय परियोजना के तहत निर्मित घरों का वर्चुअल हस्तांतरण भी करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वे नुवारा एलिया जाएंगे, जहां वे परियोजना स्थलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और जन से जन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत की उनकी ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ली जे म्योंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंत्री समूह की एक बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा और भारत की तैयारियों का आकलन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति अनिश्चित और अस्थिर है, इसलिए भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारत समुद्री बीमा पूल के गठन को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय जहाजों और माल के जोखिम भरे समुद्री मार्गों से गुजरते समय भी किफायती बीमा मिलता रहेगा। बैठक में बताया गया कि वैश्विक आपूर्ति चुनौतियों हैं और अमेरिका की कड़ी शर्तों के कारण तेहरान फिलहाल नए दौर के प्रत्यक्ष वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में हुई वार्ता का विवरण दिया है। उन्होंने अमेरिका के बारूदी सुरंग निरोधक पोत से जुड़े तनावपूर्ण गतिरोध का उल्लेख किया। एक टेलीविजन साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक गतिविधि को लेकर अमरीका के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विरोध किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज ईरान के नियंत्रण में है। गालिबाफ ने कहा कि तेहरान जलमार्ग में बारूदी सुरंग को हटाने के अमेरिका के प्रयासों को युद्ध विराम का उल्लंघन मानता है। उन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिका प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अगर उनका बारूदी सुरंग निरोधक पोत आगे बढ़ता है तो ईरान निश्चित रूप से उस पर हमला करेगा। इस बीच अमेरिका की नाकाबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि यह प्रक्षेपण आज सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनेपो इलाके से किए गए। उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया ने निगरानी को और मजबूत कर दिया है और अमरीका और जापान के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है। मौसम विभाग ने आज से बुधवार तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बारिश से फसलों को बचाने के लिए एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
राज्य के कुछ हिस्सों में 19 अप्रैल से बारिश शुरू होने की संभावना है, जो 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को तेज होगी। कृषि विभाग ने किसानों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने की सलाह दी है, जिनमें कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखना और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि गतिविधियों की योजना बनाना शामिल है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उत्तराखंड में आज उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुगम चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से होगा। वहीं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। निशानेबाजी में एशियाई खेलों के पदक विजेता शिव नरवाल और शॉटगन निशानेबाज सबीरा हारिस आज से काहिरा में शुरू हो रहे ISSF जूनियर विश्व कप में 71 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री बलबीर पुंज प्रखर लेखक, चिंतक और विचारक थे, जिन्होंने मीडिया जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल राष्ट्र के नाम संदेश को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण लिखता है, पीएम बोले हम हारे नहीं, हौसले बुलंद, पूरा करेंगे महिला आरक्षण का संकल्प। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, बिल का गिरना हार नहीं एक शुरुआत। संसद के बजट सत्र के कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर जनसत्ता ने लिखा है, लोकसभा में 93% और राज्यसभा में 110% हुआ कामकाज। भारतीय जहाजों पर ईरानी सैनिकों की गोलीबारी पर चिंता जाहिर करते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है कि भारत ने जताई नाराजगी, राजदूत तलब। लोकसत्ता ने उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को होने को सचित्र देते हुए लिखा है, आई शुभ घड़ी, पश्चिम से जुड़ेगा पूरब। पत्र के अनुसार देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी का दबदबा, निवेश, उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। जलवायु परिवर्तन पर दैनिक भास्कर की खास खबर है, 80 साल से ज्यादा के डेटा का विश्लेषण, नमी वाली गर्मी और ज्यादा तापमान एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा नहीं कर पाता और ये बदलते मौसम का खतरनाक रूप है। आज विश्व लिवर दिवस पर नवभारत टाइम्स ने डॉक्टर के 5 सबक याद रखने को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, अपने लिवर से प्यार करें, संभाल कर रखें, लंबी उम्र देगा। चारधाम यात्रा प्लास्टिक मुक्त होगी शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, नए बदलावों के साथ यात्रा का आगाज आज से।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में 5,00,000 नए मतदाता जोड़े। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ मौसम की तैयारियों और अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका रवाना। अमरीका की नाकाबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य फिर बंद किया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।